जयधवला पुस्तक चौदवी लेक्चर नंबर 11 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंकारं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाऊनं उवसमिदसयलदोषे उवसंतकसाय वीयरायन्ते उवसामये पणम्युन् कसाय उवसामणम् उच्चम्।
यह श्री भीमसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चुनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति उषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। चौदहवीं पुस्तक में यही अपनी चारित्रमुखी उपशामना नाम का अर्थाधिकार चल रहा है, जो तेरहवीं पुस्तक में शुरू हुआ था। अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 61 पर। 61 देखो, पहले में पहले ये उतरने वाले उपशमक की बात चल रही है। ग्यारहवें गुणस्थान के बाद सूक्ष्म सांप्राय में प्रवेश करता है तो वहाँ तीन लोभ का आकर्षण होने लगता है। उदयावली में संज्वलन लोभ है और बाकी दो उदयावली के ऊपर रचना होती है। यहाँ सूक्ष्म कृष्टि का उदय रहता है पूरे सूक्ष्म सांप्राय काल तक। जब सूक्ष्म सांप्राय काल समाप्त हो जाता है तो अनिवृत्तिकरण का पहला समय शुरू हो जाता है। उस समय कृष्टि एक आवली मात्र बाकी रहती है, जो बाद में स्पर्धक रूप होकर उदय में आने वाली है। तो यहाँ जो 55 पेज पर निकालना, लास्ट में जो वहाँ सूत्र लिखा है, कृष्टि वेदक काल के व्यतीत हो जाने पर, यानी सूक्ष्म सांप्राय का काल समाप्त होने पर, प्रथम समयवर्ती बादर सांप्रायिक हो गया। पहले सूक्ष्म लोभ था, भी बादर सांप्राय ने बादर कषाय वाला यानी अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में आ गया। पहले गुणस्थान से लेकर नौवे गुणस्थान तक को बादर सांप्राय कहेंगे, क्योंकि यहाँ गुणस्थान का नाम ही बादर सांप्राय रख दिया उन्होंने। हाँ, ये बादर रूप से है और दसवें में सूक्ष्म रूप से, यानी वो स्पर्धक रूप से कहेंगे हम। अब उस समय क्या क्या होता है, 56 पृष्ठ पर एक सूत्र लिखा है। उसी समय समस्त मोहनीय कर्म का अनानुपूर्वी संक्रम होने लगता है। चढ़ते समय अंतर करने के बाद अनुपूर्वी संक्रमण शुरू हुआ था, वो अनुपूर्वी संक्रमण छूट जाता है तो जो चारित्र मुनि की कोई भी प्रकृति किसी में भी संक्रमित होने लगेगी। ऐसा कोई नहीं कि विशेष ऑर्डर में ही उसको संक्रमण करना पड़े। नौवे में आते ही अनानुपूर्वी शुरू हो जाता है समस्त मुनि कर्म का, चढ़ने वाले के अंतर के बाद। पहले समय में चढ़ने वाले ने जब अंतर किया, अंतर करने के एक समय, अंतर करते ही नेक्स्ट समय में अनुपूर्वी संक्रमण शुरू हुआ था। हमने देखा था ना, 7 करण एक साथ शुरू हुए थे तभी वो अनुपूर्वी संक्रमण शुरू हुआ था। अनुपूर्वी संक्रमण में लोभ का असंक्रामक हो जाता है, क्योंकि संज्वलन लोभ का किसी में संक्रमण नहीं होता। बाकी जो है वेद है वो क्रोध में, क्रोध है वो इस तरह से, वो सब वहाँ शुरू हुआ था। अब कहते समस्त मोहनीय कर्म का संक्रमण अनानुपूर्वी रूप से होगा, परंतु जो अभी उपशमित पड़े हैं, यानी अनुपूर्वी संक्रमण तो छूट गया, परंतु जिन कर्मों का उपशम अभी छूटा नहीं है, नष्ट नहीं हुआ है, वो तो उपशमित पड़े हैं। भले अनुपूर्वी संक्रमण मिट गया है, जब उनका उपशम छूटेगा तब उनका संक्रमण चालू हो जाएगा। तो अभी किसका छूटा है, तीन लोग का। तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जो लोभ है वो संज्वलन लोभ रूप से यहाँ संक्रमित होने लगे। संज्वलन लोभ में भी शक्ति है अन्य में संक्रमित होने की, परंतु नियम यह है कि बंधने वाले में संक्रमण होता है। अभी अब तक माया का, मान का, क्रोध का बंध शुरू नहीं हुआ है, वो क्रम से शुरू होगा। इसलिए यहाँ शक्ति अपेक्षा होने पर व्यक्त उत्तर संक्रमण लोभ संज्वलन का अभी भी नहीं होगा। तो यहाँ संभव की अपेक्षा बात बताई, संभव यानी पॉसिबिलिटी, शक्ति उसकी, संक्रमण होने की उसमें तो कैपेसिटी है, परंतु अभी दूसरी बनती नहीं तो कैसे संक्रमण करे। उसके बाद आगे का सूत्र देखते हैं 56 पृष्ठ पर। उसी समय दो प्रकार का लोभ लोभ संज्वलन में संक्रमित होता है, वो तो चलेगा उसमें, और प्रत्यक्षण प्रत्यक्षण संज्वलन लोभ में संक्रमित होता है। 57 पृष्ठ पर उसी समय यानी नवे गुणस्थान का पहला समय उतरने वाले का स्पर्धकगत लोभ का वेदन करता है। अभी तक कृष्टिगत लोभ था, अभी स्पर्धक रूप से उदय में आएगा, यानी अधिक अनुभाग रूप से, इसलिए उसको बादर सांप्राय कहा। आगे का सूत्र, उस समय कृष्टियां सब नष्ट हो जाती है, और उसी के साथ नीचे का पढ़ेंगे, इतनी विशेषता है कि जो कृष्टियां उदयावली में प्रविष्ट है वे थ्यूप संक्रमण द्वारा स्पर्धक रूप से विपाक को प्राप्त होती है। यानी जो मैंने बताया ना, एक आवली प्रमाण उदयावली में बाकी रहती है, अभी उसका उदय मिटा है, फिर भी उदयावली प्रमाण निषेक कृष्टि रूप से वहां पड़े हैं, यानी उन निषेकों में कृष्टि रूप से अनुभाग पड़ा है। अब एक एक निषेक का अनुभाग है वो स्पर्धक रूप से होकर उदय में आएगा, विपाक होना है ना, उदय आना। स्थिवुक संक्रमण ने एक एक वर्तमान का जो निषेक है, एट ए टाइम एक निषेक के परमाणु स्पर्धक रूप हो जाएगा, कृष्टि रूप से ना हीन अनुभाग वाले थे, अब उसका अनंत गुणा अनुभाग बढ़ेगा। ये कृष्टि वाले हमने यहाँ निषेक बताए कृष्टि रूप से, अब यहाँ नई रचना हो जाएगी बादर यानी स्पर्धक रूप से। तो ये कृष्टि वाले मात्र एक निषेक के जो परमाणु है वो स्पर्धक रूप होकर उदय में आएंगे, इसको कहते हैं स्थिवुक संक्रमण, एक समय वाला ही है उदयपुर का।
क्या क्या है?
वर्तमान का एक निषेक जो है उसमें वो संक्रमण होगा। अभी यहाँ अनुभाग का संक्रमण है, कृष्टि है वो स्पर्धक रूप हो रही है, प्रकृति के ही नहीं हो रही है, लोभ की लोभ अनुभाग संक्रमण, लोभ का लोभ रूप ही रह रहा है, कृष्टि वो स्पर्धक रूप से संक्रमित हो रही है। अब उसके आगे 58 पेज पर देखते हैं, यहाँ जो गुण श्रेणी बनेगी उसको हमने देखा था, जो लोभ वेदक काल से एक आवली प्रमाण अधिक होगी। यहाँ जो लोभ वेदक काल है, यहाँ का लोभ वेदक काल, पूरा लोभ वेदक काल पूछेंगे तो दसवें गुणस्थान का प्लस नौवे का सबके तीन भाग करेंगे तो उसमें से वन थर्ड सूक्ष्म सांप्राय में बीत जाएगा और टू थर्ड नौवे गुणस्थान में। तो ये यहाँ का लोभ वेदक काल है, तो यहाँ का जो लोभ वेदक काल है उसमें प्रति समय ये जो आकर्षण होगा वो कैसा होगा, असंख्यात गुणा हीन प्रदेश नीचे आएंगे, चढ़ते समय असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा बढ़ते हुए आते थे, अब हीन होकर आएंगे। चढ़ने वाले की विशुद्धि एकदम स्टीप राइज, अनंत गुणा प्रति समय बढ़ती है, अब यहाँ प्रति समय अनंत गुणा घटती है विशुद्धि, या संकलेश बढ़ते कहूँ तो एक ही बात है। अब 58 पृष्ठ पर जो नीचे का सूत्र उसको पढ़ेंगे डायरेक्ट। बादर सांप्रायिक जीव के प्रथम समय में लोभ संज्वलन का स्थितिबंध अंतर्मूर्त होता है, तीन घाती कर्मों का कुछ कम दो दिन रात प्रमाण है, दिन रात इसलिए कहा 24 घंटे कहना था ना, और वेदनीय नाम और गोत्र का कुछ कम चार वर्ष प्रमाण। अब एक एक स्थितिबंध अंतर्मूर्त तक होता है, फिर दूसरा स्थिति बंधन और बढ़कर होगा, नीचे उतरते समय बढ़कर होगा, फिर और दूसरा स्थिति बंधन और बढ़कर होगा। तो ऐसे बहुत सारे स्थिति बंधन बीत जाने पर, ये जो हमने लोक वेदक काल देखे थे उसमें से पहला वाला, उसका संख्यात्वा भाग बीत जाता है तो उस पोजीशन पर कितना बंध होता है वो आगे 59 पेज पर लिखा है। वो बीच में दूसरा एक बात है कि एक ही स्थिति बंध होने पर वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का संख्यात हजार वर्ष प्रमाण होने लगता है, चार वर्ष से संख्यात हजार प्रमाण वर्ष प्रमाण, तीन घाती कर्मों का दिन रात पृथक्व और लोक संज्वलन का पहले बंध से विशेष अधिक। अब उसी 59 पेज पर लास्ट लाइन, लोभ वेदक काल के द्वितीय त्रिभाग संबंधी वहां संख्यात्वा करना और निकालना, संख्यात्वा भाग जाकर मुनि कर्म का स्थिति बंध मुहूर्त पृथक्व प्रमाण होता है। मुहूर्त यानी दो घड़ी, यानी 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, और पृथक्व मुहूर्त यानी कुछ मुहूर्त, यानी 7 से 8 मुहूर्त ऐसा समझो ना। पृथक्व कैन बी एनीथिंग, गिने चुने ऐसा हम कहेंगे। नाम गोत्र वेदनीय का संख्यात हजार वर्ष होता है और तीन घाती कर्मों का दिन रात पृथक प्रमाण स्थिति बंध होता था, उससे अभी हजार वर्ष पृथक प्रमाण हो जाता है। वो एक शब्द निकाला था उसमें से। उसके बाद आगे 60 पेज पर नीचे, इस प्रकार हजारों स्थिति बंधों के जाने पर लोभ वेदक काल समाप्त होता है। ये लोग वेदक काल यहाँ समाप्त होगा।
यहाँ पे ऐसा भी देखा था ना कि चढ़ने की अपेक्षा नीचे उतरने वाले का लोग वेदक काल थोड़ा ज्यादा है।
ज्यादा यह लिखा नहीं आपको 139, अभी जो हम पढ़ रहे हैं नीचे से पांचवी लाइन, अभी जो सूत्र पढ़ा उसी की पहली लाइन। हाँ। इतनी विशेषता कि चढ़ने वाले का लोग वेदक काल विशेष हीन जानना चाहिए, क्योंकि चढ़ने वाले और उतरने वाले जीवों में सभी कालों की इसी विधि से प्रवृत्ति स्वीकार की गई है। सब में वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा होगा। यहाँ तक कल का विषय अपना समाप्त होता है, अभी आज का यहाँ शुरू हो जाता है। पृष्ठ 61 ऊपर सूत्र पढ़ेंगे। से काले, से का अर्थ होता है तदनंतर समय में, नेक्स्ट समय में। मायम तिविह तिविहम ओकड्डियुण माया संजलनस्य उदयादि गुण से ही कदा, द्विहाय मायाय आवलीय बाहिरा गुण से ही कदा। तदनंतर समय में तीन प्रकार की माया का अपकर्षण करके माया संज्वलन की उदयादि गुण श्रेणी करता है। उदय के समय से लेकर गुण श्रेणी करता है, पहले लोभ की थी, अब माया की तथा अन्य दो प्रकार की माया की आवली बाह्य गुण श्रेणी करता है, उदयावली के ऊपर करता है। संज्वलन माया उदय के समय से है और अन्य दो उदयावली के ऊपर से, उसकी भी गुण श्रेणी होती है। लोभ वेदक काल के समाप्त होने पर तदनंतर समय में ही तीन प्रकार की माया का अपकर्षण करके इस विधि से गुणश्रेणी निक्षेप करता है, यह सूत्र का तात्पर्य है। वह जैसे तीन प्रकार की माया का अपकर्षण करता हुआ माया संज्वलन की अवस्थित आयाम वाली उदयादि गुणश्रेणी को अपने वेदक काल से एक आवली अधिक रूप से रचता है। माया का जो वेदक काल है उससे एक आवली अधिक उसकी रचना हो जाती है। इसी प्रकार शेष दोनों मायाओं की गुणश्रेणी रचना करता है, इतनी विशेषता है उनकी उदयावली बाह्य गुणश्रेणी रचना करता है,
क्योंकि वो उदय रूप प्रकृति नहीं है इसलिए उसकी रचना उदयावली के ऊपर होती है।
शंका, ऐसा क्यों? समाधान, नहीं क्योंकि वे नहीं वेदी जाने वाली प्रकृतियां हैं। नहीं वेदी यानी अनुदय रूप है, उदय उनका नहीं है, इसलिए उनका उदयावली के भीतर प्रदेश निषेकों की गुणश्रेणी रचना होना असंभव है। देखो पूछना जो नहीं आता है तो। पहले में पहले क्या हुआ था, उपशम श्रेणी चढ़ा था, जब चढ़ा था तभी क्या किया था उसने कि जो चारित्र मूल की कर्म प्रकृति है उसमें अंतर कर दिया था, नवे गुण स्थान में अंतर हुआ था। फिर क्रम से यहाँ जो पहली द्वितीय स्थिति बनी थी उसमें जो यथायोग्य प्रोसेस हुए थे उसके बाद ये यहाँ ग्यारहवें गुणस्थान में आया। यहाँ तो बिल्कुल गैप है, यहाँ कोई निषेक नहीं थी, ग्यारहवां गुणस्थान समाप्त हुआ मान लेते, यहाँ पर ग्यारहवां गुणस्थान समाप्त हुआ, अभी भी इतना अंतर बाकी है, यहाँ निषेक ही नहीं है, परंतु यहाँ जितने सारे उपशमित हुए पड़े थे द्वितीय स्थिति में एक एक का उपशम का काल समाप्त होगा। उपशमित हुए थे ने क्या किया था, उसका अपकर्षण होना रुक गया था, उसका उदय होना रुक गया था, उसकी उदीर्ण होने रुक गई थी, जो कुछ सब। अब क्या होगा, इसमें से परमाणु नीचे आएंगे और यहाँ पर निषेक रचना हो जाएगी। पहले में पहले कौन से परमाणु आएंगे नीचे, तो तीन लोभ के। तो तीन लोभ में भी क्या था कि जो संज्वलन लोभ है उदय के समय से लेकर उसकी गुणश्रेणी रूप से रचना हुई थी, वो कितनी लंबी क्या, वो तो अभी विस्तार से हम जानेंगे। यानी यहाँ नए निषेक बने थे, ये तो उदयावली से लेकर ही गुणश्रेणी करते असंख्यात गुण असंख्यात गुण। उदय के समय में मिनिमम दिया, उसके ऊपर द्वितीय समय के निषेक में असंख्यात गुण असंख्यात गुण असंख्यात गुण असंख्यात। परंतु अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान लोग नीचे तो आ गए, उसका उदय तो नहीं है, तो उदयावली के जितने निषेक है उसको छोड़कर उसके ऊपर उसकी भी गुणश्रेणी रूप से रचना हो जाएगी। तो इसका बाद में क्या होगा, जब ये एक एक निषेक नीचे आएगा, यानी उदयावली में असंख्यात गुणा रूप से नहीं दिया जाता, उसके ऊपर ही असंख्यात गुणा क्रम से दिया जाएगा, तब जे ये निषेक जब उदय रूप हो गए तो संज्वलन लोग रूप से उदय में आ जाएंगे, अपने रूप से तो उसका उदय नहीं होगा। अब ये संज्वलन लोभ का उदय काल समाप्त हुआ, लोभ वेद काल समाप्त हुआ। अब क्या हुआ, अभी माया के परमाणु जो उपशमित थे उसका उपशमित छूट गया, तो उसकी भी निषेक के ये गुणश्रेणी रचना होगी, माया के भी गुणश्रेणी रचना होगी। तो उसमें क्या होगा, उदय रूप क्या है, माया संज्वलन, और अन्य दो अनुदय रूप है। तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान की उदयावली को छोड़कर उसके ऊपर से उसकी भी गुणश्रेणी रूप से रचना हो जाएगी, यही बात अभी हमने पढ़ी। उतरने वाले की बात चल रही, चढ़ने वाले के तो वहाँ वो गैप में ही एक एक की प्रथम स्थिति बनाई थी उसने, प्रथम स्थिति में भी गुणश्रेणी रूप से ही रचना की थी, पहले क्रोध की फिर मान की फिर माया की फिर लोभ। अब उतरने वाले में उल्टे क्रम से, पहले लोभ की अभी माया की कर रहा है, तीन तीन को अपकर्षित करेगा, उसमें से एक संज्वलन है वो उदय रूप है, अन्य दो है वो अनुदय रूप है। उदय रूप के उदय के समय से लेकर गुणश्रेणी रचना होगी और अनुदय रूप से उदयावली के ऊपर से होगी, इतनी बात है इसमें। अब नीचे से तीसरी लाइन इस पेज पर, अब उस समय तीन प्रकार के लोभ का गुणश्रेणी निक्षेप किस प्रकार का है, क्या हुआ, पेज 61। ऐसी आशंका होने पर इस सूत्र को कहते हैं, यानी अभी माया की तो गुणश्रेणी बनाई, लोभ की गुणश्रेणी का क्या हुआ, क्या नष्ट हुई, क्या क्या हुआ, शंका होना तो साहजिक है, अभी उसका उत्तर यहाँ देंगे। पहले ऊपर का सूत्र पढ़ेंगे प्राकृत वाला, पढ़म समय माया वेदगस्य गुणश्रेणी निक्षेवो तिविहस्य लोहस्य तिविहाय मायाय च तुल्लो माया वेदगत धादो विशेषाही। प्रथम समय में माया वेदक के तीन प्रकार के लोभ और तीन प्रकार के माया का गुणश्रेणी निक्षेप एक समान होता है, जो माया के वेदक काल से विशेष अधिक होता है। पहले हमने देखा था लोभ की तो गुणश्रेणी बनाई ही थी उसने, अब माया की भी गुणश्रेणी बनेगी और वो उसी के समान होगी। गुणश्रेणी का जो टॉप शीर्ष है वो सबका समान है, तीनों का समान है, केवल नीचे उदयावली में वो नहीं गुण श्रेणी है, किसकी अप्रत्यक्षम प्रत्यक्षम, जो उदय रूप होता है वो उदय के समय से लेकर उसकी रचना होती है। यहाँ 62 पृष्ठ पर पढ़ते अभी इस सूत्रकार का, जिस प्रकार तीन प्रकार की माया का गुणश्रेणी निक्षेप यहाँ पर माया के वेदक काल से विशेष अधिक हो गया है, उसी प्रकार तीन प्रकार के लोग का भी यहाँ पर तत्प्रमाण ही गुणश्रेणी निक्षेप प्राप्त होता है, यह इस सूत्र का अर्थ है। ये बात ख्याल में है ना, अभी वो तीन और ये तीन गुणश्रेणी निक्षेप समान हुआ। इतनी विशेषता है कि तीन लोगों का उदयावली के बाहर प्रदेश विन्यास होता है, क्योंकि वहाँ उनका उदय नहीं पाया जाता। अभी लोभ का उदय मिटकर माया का शुरू हुआ है, तो जिसका उदय है उसकी गुणश्रेणी उदय के समय से है, बाकी तो उदयावली के ऊपर गुणश्रेणी रूप से हो गए।
यहाँ पे जब पहली बार जब लोभ की गुणश्रेणी रूप करता हुई थी, लोभ वेदक काल से ही कावली प्रमाण ज्यादा हुई थी। अभी यहाँ पे जो ये माया के समान लोभ की भी बनेगी वो नहीं बनेगी गुणश्रेणी,
नहीं वहाँ वो भी अवस्थित थी कि गलित अवशेष थी,
वो तो अवस्थित थी। नहीं, पर वहाँ पे क्या बताया था, क्योंकि लोभ वेदक काल प्लस एक आवली इतनी गुणश्रेणी रूप रचना
बराबर है, निकालो वो।
हाँ, पर तो वो अवस्थित होगी, तो अभी क्या,
अभी भी माया के बारे में अवस्थित ही बताया था।
हाँ, अवस्थित बताए तो वो खाली एक आवली प्रमाण ज्यादा होगी। ये 61 के ऊपर की लाइन में, तीन प्रकार के लोग की वेदक काल से एक अधिक आवली अधिक प्रमाण वाली गुण श्रेणी की रचना करता है।
हाँ, वो आवली प्रमाण अधिक गुण श्रेणी की रचना कहाँ पर गया,
ये 60 पेज पर लास्ट लाइन में,
60 पेज पर।
तो एक आवली अधिक काल वाली लोग की गुण श्रेणी रूप रचना हुई थी।
हाँ, एक आवली ज्यादा है।
हाँ, अभी यहाँ पे क्या बताया कि माया की जितनी गुणश्रेणी प्रस्ताव होती है उतनी लोभ की भी गुणश्रेणी बनती है, तो ये लोभ की नई गुणश्रेणी को प्रस्ताव हो जाएगी,
नहीं उसकी तो मेरे ख्याल से अवस्थित ही है ना वो।
नहीं तो वहाँ पे तो एक आवली काल ही ज्यादा बताया था और ये वेदक काल तो ज्यादा बता रहे हैं।
अभी जो होगी उस प्रमाण उसकी भी और गुणश्रेणी में बढ़ोतरी हो जाएगी उसकी।
अच्छा, वो गुणश्रेणी बढ़ती जाती है,
गुणश्रेणी यानी क्या, ऊपर के अन्य अन्य निषेक
गुणश्रेणी रूप रचना हो जाती है,
उसमें जुड़ जाएंगे और नीचे का एक एक निषेक गलेगा, ऊपर का एक एक निषेक गुणश्रेणी में आएगा, तभी तो उसको अवस्थित कहेंगे ना।
हाँ, अवस्थित कही थी,
ये गलित अवशेष नहीं ना, ये अवस्थित है कि नहीं।
यहाँ पे क्या बताया, लोभ वेदक काल से एक आवली अधिक प्रमाण वाली गुणश्रेणी की रचना करता है,
बराबर,
तभी एक आवली काल वाली अधिक गुणश्रेणी रचना लोभ की हुई थी। अभी लोभ का काल खत्म हो गया और माया की नई गुणश्रेणी रचना हुई, तभी माया की और लोभ की समान बता दी उन्होंने,
बराबर।
तो माया की जो,
अभी माया का भी माया वेदक काल से एक आवली ज्यादा है ना।
हाँ, माया का एक वेदक एक आवली काल ज्यादा है, पर माया का वेदक काल भी अंतर्मूर्त है,
बिल्कुल।
हाँ, और लोभ की गुणश्रेणी रूप से जो रचना हुई थी वो एक आवली प्रमाण ज्यादा बनी थी, तो उतनी वो बढ़ती जाती है, क्योंकि वो गलिताओं से ही अवस्थित है, तो वो एक एक विषय गुण श्रेणी में आता जाता है। तो लोभ का वेदक काल अभिवृत्तिकरण में और माया का वेदक काल समान हो जाता है,
समान की बात तो नहीं कह सकती मैं, क्योंकि जब मान की बनेगी ना, यानी जहाँ जिस वेदक काल में आ गया है उससे एक ही कावली प्रमाण ज्यादा ज्यादा होता रहता है। हाँ,
तो लोक का वेदक काल है उतना ही मान का भी हो जाएगा और माया का भी इतना ही वेदक काल हो जाएगा,
जरूरी नहीं है,
जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ये अवस्थित गुण श्रेणी बनती है।
अपने अपने वेदक काल से एक आवली इतना समझ लेना, प्रत्येक का वेदक काल समान है ऐसी बात यहाँ नहीं की है, अपने अपने वेदक काल से एक आवली जाना।
नहीं, यहाँ पे ये लास्ट सूत्र पढ़ा मैं, प्रथम समय में माया वेदक के तीन प्रकार के लोभ और तीन प्रकार के माया का गुण श्रेणी निक्षेपेक समान होता है, इसीलिए
एक समान होता है। पहले जो गुण श्रेणी की थी
हाँ, वो अवस्थित थी
हाँ, अभी उसमें भले ये काल
एक
ज्यादा होगा,
नीचे से जाता है
ये काल ज्यादा भी होगा, तो अभी जितनी कुछ है अभी माया वेदक की और इसकी समान हो जाएगी, इतना समझ लिया। माया वेदक काल से एक अवली प्रमाण यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी, गुण श्रेणी बढ़ने दो ना,
नहीं गुण श्रेणी नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि माया लोक के तो नीचे के निषेक तो निकल गए,
फिर भी वो अवस्थित है कि नहीं,
नहीं? अवस्थित
निकल कहाँ गए,
नहीं अवस्थित है तो ऊपर गुण श्रेणी की
रक्षा आयाम उतना ही है
हाँ, तो वो
अब माया वेदक का बनेगा। अब माया वेदक का जो कुछ काल है उससे अधिक ले लो ना,
माया वेदक काल से ही कावली प्रमाण अधिक हो
अभी अधिक इतने निषेक और गुण श्रेणी रूप में, और
इसीलिए मैंने पूछा कि दोनों का समान वेदक काल है, नहीं
वो मैं नहीं कहूँगी, जितनी बात आई उतनी हूँ कहेंगे ना, वे सबके वेदक काल समान है ऐसी तो बात नहीं, अंतर्मूल प्रमाण है यथा युग, और जिसका जितना वेदक काल है उससे आवली प्रमाण ज्यादा गुण श्रेणी की रचना होगी। माया भी तीन अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, संजवल हाँ, वो तो समझने जैसे अभी बताएंगे, जो अनुदय रूप है अभी लोभ भी अनुदय में चला गया
हाँ,
वो भी आवली के ऊपर चला
हाँ, वो भी आवली प्रमाण जा रही, तो उसकी अवस्थित चल रही है,
देखो देखो यहाँ बासठ पुष्प 142 पॉइंट सेकंड लाइन, जिस प्रकार तीन प्रकार की माया का गुण श्रेणी निक्षेप मिला सेकंड लाइन, यहाँ पर माया के वेदक काल से विशेष अधिक हो गया है, उसी प्रकार तीन प्रकार के लोभ का भी यहाँ पर तत्प्रमाण ही गुण श्रेणी निक्षेप प्राप्त होता है, यह इस सूत्र का अर्थ है। नीचे नीचे तो वेदक काल बढ़ेंगे मेरे ख्याल से, अभी पता नहीं, अभी मैं तो नहीं कहूँगी अपनी ओर से, जो कुछ है उससे अधिक होगा। अकेला संज्वलन माया उदय के समय से गुण श्रेणी है, बाकी आवली के ऊपर से होगी,
नहीं तो लोक की तो तीनों की आवली प्रमाण अधिक हुई थी रत्न,
अभी उदय किसका शुरू हुआ,
अभी माया का नहीं, माया का शुरू हो गया
हाँ।
पर जो ये आवली प्रमाण जो अधिक बनी थी वो अभी त्रिभुव संक्रमण द्वारा हो,
वो होने दो ना, उसकी कौन कहता है गुण श्रेणी रूप से रचना कितने निषेकों में होगी, उदय के समय से गुण श्रेणी रूप से नहीं दिया जाएगा अपकर्षित द्रव्य, ऊपर दिया जाएगा, उदीर्णा किसकी होती है,
अभी माया की होती
है, जिसका उदय है उसकी, तो जिसकी उदीर्णा ही नहीं होगी उदयावली में प्रवेश दिए नहीं जाएंगे गुण श्रेणी रूप से।
मैंने तो खाली ऐसे ही पूछा
हाँ, नहीं नहीं पूछो ना, जरूर हाँ, पूछो,
क्योंकि मेरा मन में डाउट है
हाँ,
क्योंकि अवस्थित गुण श्रेणी बताइए,
अवस्थित है तो बढ़ सकती है कि नहीं, अभी
नहीं अवस्थित तो नीचे से ही जाएगा ऊपर ही आएगा,
जो लोभ का काल है तब तक अवस्थित थी,
अच्छा पीछे
जब माया में प्रवेश किया तो बढ़ सकती है ना
हाँ।
अभी माया वेदक से अधिक हो गए हाँ। जब मान में आएगा तो मान वेदक से अधिक हो जाएगी
हाँ।
बढ़ तो सकती, क्योंकि जहाँ संग्रह जाता है गुण श्रेणी का आयाम बढ़ता चला जाता है
हाँ।
नीचे के गुण स्थानों हाँ। में गुण श्रेणी का आयाम अधिक अधिक है, यहाँ तो गुणस्थान वही है परंतु प्रमाण परिणाम जो है वो संक्लेश रूप से। देखो यहाँ क्या लिखते हैं, जिस प्रकार तीन प्रकार की माया का गुणश्रेणी निक्षेप, गुणश्रेणी निक्षेप इसका अर्थ होता है कितने निषेकों में गुणश्रेणी रूप से द्रव्य दिया जाएगा, उन निषेकों की संख्या को यहाँ गुणश्रेणी निक्षेप कहते हैं, जिसको माया भी कहते हैं। यहाँ पर माया के वेदक काल से विशेष अधिक हो गया, यानी आवली मात्रा अधिक हो गया, उसी प्रकार तीन प्रकार के लोभ का भी यहाँ पर तत्प्रमाण ही गुणश्रेणी निक्षेप प्राप्त होता है, यानी वहाँ तक के निषेक जो जितना है वहाँ तक इसमें भी गुणश्रेणी रूप से द्रव्य दिया जाएगा, यह इस सूत्र का अर्थ है। अब उसमें डिफरेंस क्या होगा, तो इतनी विशेषता है, आगे लिखा ना, इतनी विशेषता है कि तीन लोगों का उदयावली के बाहर प्रदेश विन्यास होता है, क्योंकि वहाँ उनका उदय नहीं पाया जाता, तो तीन प्रकार के लोभ और दो प्रकार की माया भी ऊपर ही रहेगी,
अब कहते सौव माया वेदगत धाये तत्यो तत्यो चेव निक्षेवो। इसका अर्थ क्या है? निक्षेप उतना उतना ही है, इसका अर्थ ही उतने ही निषेकों में गुण श्रेणी रूप से मार दिया जाएगा। इसका अर्थ जो गुण श्रेणी का आयाम है वो अवस्थित रहेगा, नीचे से एक एक, देखो ये गुण श्रेणी कही जाती है, इसमें मान लेते इतने निषेक है, अभी नीचे का एक निषेक उदय होकर फिर गया तो ऊपर के एक निषेक में असंख्यात गुणा क्रम से दिया जाएगा, उसको गुण श्रेणी कहलाएगी। फिर और एक निषेक चला गया, ऊपर का और एक निषेक इसमें एंटर होगा, असंख्यात गुणा क्रम नंबर ऑफ निषेक उतने ही रहे। कब तक? पूरा माया वेदक होने तक। माया में आने पर
वो बाकी थी ना, क्योंकि एक आवली अधिक प्रमाण में
अधिक था, पर गुण श्रेणी अभी कहाँ बाकी थी, उसको पहला और दूसरा स्थिति कहेंगे तो बाकी का सवाल है।
नहीं, ग्लोब वेदक काल से गुण श्रेणी कितनी हुई थी? एक आवली प्रमाण अधिक हुई थी।
हाँ,
अभी नीचे से एक एक निषेक जाता है
तो ऊपर से एक एक एंटर होता है।
हाँ, तो वो गुण श्रेणी जो
उदयावली ने पूरी की पूरी गुण श्रेणी शीलक है।
हाँ, क्योंकि अवस्थित है।
हाँ,
अवस्थित है ना,
नष्ट ही नहीं हुई। पर जब यहाँ माया का उदय शुरू हुआ तब ये जो यहाँ से उदय में थे अभी इसका उदय मिट जाएगा और यहाँ जो नई गुण श्रेणी होगी नेक्स्ट समय में जो आकर्षण होगा तो यहाँ गुण श्रेणी जो उदय में दी ही ऑलरेडी वो वैसे ही रहेगी। उसके ऊपर यानी यहाँ जो नया माल दिया जाएगा वो नहीं दिया जाएगा, इसके ऊपर यहाँ से यहाँ इस तरह से दिया जाएगा। वो होने दो कि उसकी कुछ बात नहीं है, पर आवली प्रमाण शेष रहता ऐसा नहीं कहेंगे हम। पूरे उदय के समय से पूरी जो अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति पड़ी है और गुण श्रेणी अवस्थित है, अंतर्मूर्त वाली गुण श्रेणी है, उसके ऊपर भी इमीडिएट लगते हुए सारे निषेक पड़े हैं, उनमें से हर समय अपकर्षण हो रहा है। अपकर्षण होकर पहले उदय के समय से यहाँ गुण श्रेणी रूप से दिया जाता, अब उदय का समय छोड़ दो, नीचे एक आवली छोड़ दो, उसके ऊपर गुण श्रेणी रूप से दिया जाएगा। ऊपर की लिमिट सबकी माया वेदक काल जितनी हो जाएगी, अभी माया की अपनी गुण श्रेणी बनेगी,
वही प्रमाण से लोक की भी
सब में, सब में बनेगी उतनी। अभी तीन इसकी लोक की और तीन माया की हो जाएगी, परंतु उदय रूप एक संज्वलन माया में रहेगी। अन्य जो कुछ उदयावली में प्रवेश करती है वो एक एक समय वाली संज्वलन माया रूप से होकर उदय में आएगी। नहीं, अभी तो अनुदय रूप हो जाएगी, अब तक तो उदय रूप थी संज्वलन लोभ की, वो अनुदय रूप हो गई, तो अभी जो जो उदय के समय तक पहुंची है उसका क्या होगा? तो माया रूप से होकर उदय में आएगी स्त्रीभूत संक्रमण के द्वारा। स्त्रीभूत संक्रमण भी होगा और बाकी संक्रमण भी होगा, क्योंकि अभी तक तो लोभ का बंध था, अब लोभ और माया का बंध होने लगेगा। अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, हमने ऊपर पढ़ा सूत्र प्राकृत में, सब माया वेदगत धाये तत्यो तत्यो चेव निक्षेव। तत्यो में उतना उतना ही निक्षेप है, पूरे माया वेदक काल के भीतर उतना उतना ही निक्षेप करता है, यानी गुण श्रेणी आयाम समान रहता है। तीन प्रकार के लोग और तीन प्रकार की माया का माया वेदक काल के अंतिम समय तक अवस्थित ही गुण श्रेणी निक्षेप होता है, गलित शेष नहीं, यानी वो तो गुणश्रेणी है ही वहाँ पड़ी हुई जो पहले बनी थी, यानी वहाँ आवली प्रमाण शेष रहता है ऐसा कहने का कुछ काम ही नहीं है। हाँ, आवली वाले जो कुछ है ऑलरेडी उदय आवली में प्रवेश कर चुके हैं वो अभी माया रूप से एक एक करके उदय में आएंगे, और नया वहाँ जो गुणश्रेणी रूप से रचना होगी उदय आवली के ऊपर होगी। ज्ञानावरणादि कर्मों का उस काल में कैसा गुण श्रेणी निक्षेप होता है ऐसी आशंका होने पर इस सूत्र को कहते हैं। पहले हमने देखा था 11वें गुण स्थान के बाद गलित शेष शेष कर्मों में लिखा था, निकालो, तो अभी कुछ डिफरेंस होगा तो हमें पता चलेगा। 50 पेज पर
गलता उपदेश है।
देखो आयु कर्म को छोड़कर सूत्र पढ़ेंगे, शेष कर्मों का गुण श्रेणी निक्षेप, मुनि को भी छोड़ो यहाँ पर, अनिवृत्तिकरण के काल से और अपूर्वकरण काल से विशेष अधिक होता है तथा शेष शेष में निक्षेप होता है। जब श्रेणी उतरना चालू हो गई थी, नीचे का पढ़ेंगे। देखो पहले ज्ञानावरणादि कर्मों का गुणश्रेणी निक्षेप, उपशांत कषाय के काल के संख्यात्वे भाग प्रमाण अवस्थित आयाम वाला था, 11वें गुणस्थान। इस तरह उतरने वाले के वह, अब ये जो उतरने वाला है उसके कितने नए गुणश्रेणी का आयाम बन जाता है, कितने प्रमाण, अभी अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्रदाय का जितना सब काल है सब मिलकर जितना है उतना हो जाएगा। वह अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण काल से विशेष अधिक आयाम वाला हो जाता है और ज्ञानावरणादि कर्मों का यह गुणश्रेणी निक्षेप गलित शेष जानना चाहिए। ये गुणश्रेणी का निक्षेप जो है उसका आयाम है वो एक एक समय से कम होता चला जाएगा। अब आना आपने यहाँ पर, अब 62 पेज पर पहले ऊपर का हम सूत्र पढ़ेंगे। शेषाणम कम्माणम जो पुनः पुविल्लो निक्षे वो तस्स शेषे शेषे चे व निक्षिवदी गुण सेडिंग, परंतु शेष कर्मों का, ये मोहनी की बात बता दी, आयु को तो छोड़ना उसमें कुछ परिवर्तन नहीं है, अन्य जो है मोहनी छोड़ी अन्य आयु छोड़ी अन्य जो स्वकर्म है उसमें जो पूर्व का निक्षेप है, पूर्व का निक्षेप है जो बाकी बचता बचता होता एक एक समय में एक एक घट रहा था उसके शेष शेष में ही गुणश्रेणी को निक्षिप्त करता है। इसको कहते हैं गलितावशेष, गलित है ने गल जाना, नीचे से एक एक समय घट जाना और जितना बचेगा उसमें वो गुणश्रेणी रूप से निक्षेप होता है। ज्ञानावरणादि कर्मों के पहले स्वीकार किए गए अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के काल से विशेष अधिक प्रमाण वाले, ये अपूर्व अनिवृत्तिकरण काल से थोड़े अधिक प्रमाण वाले ये गुणश्रेणी का यह आयाम बना था तथा गलित शेष आयाम रूप से गलने वाले गुणश्रेणी निक्षेप का उत्तरोत्तर शेष शेष में निक्षेप होता है। इसका अर्थ समझ में आई बात, आयाम कितना था तो अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण और विशेष अधिक, अब कहते उसमें भी हर समय गल रहा है, अन्य प्रकार से नहीं है उक्त सूत्र का तात्पर्य। अब प्रथम समयवर्ती माया वेदक के, यानी माया वेदक के पहले समय में क्या किया था उसने, तीन प्रकार के माया का आकर्षण करके उसकी गुण श्रेणी बनाई थी, लोक की तो ऑलरेडी थी ही, वो भी इसके प्रमाण मात्र हो गई है, यानी अभी वहां तो इसकी तो 6 अलग अलग गुण श्रेणियां बनी है। अब वहीं पर क्या है, माया और लोभ दोनों संज्वलनों का बंध संभव होने पर, जब तक लोभ का अकेले का उदय था तो मात्र लोभ का ही बंध होता था, अब माया का भी उदय है तो बंध दोनों का होगा, उदय एक का ही होगा, माया का उदय और माया और लोभ का बंध, वहां उनके संक्रम के क्रम का निश्चय करने के लिए आगे के सूत्र का अवतार करें। अब इसमें इन दोनों में संक्रम होगा, बंधने वाले में संक्रमण होता है। माया वेदगस्य लोहो तिविहो माया, माया वेदगस्य ने जो माया वेदक जीव है उसकी बात चल रही है, उसका जो लोभ है लोहो तिविहो माया दुविहा माया संजलने संकमरी माया तिविहा लोभो से दुविहो लोभ संजलने संकमरी, इसका अर्थ देखते हैं। माया वेदक के तीन प्रकार के लोभ लोहो तिविहो और दो प्रकार की माया का माया दुविहा, तीन लोभ और दो माया, माया संज्वलन में संक्रम करता है क्योंकि उदय किसका है बंध किसका है, माया और लोभ दोनों का है तथा इसलिए दोनों में संक्रमण होगा और यहाँ अनुकूल भी नहीं है उल्टा पुल्टा भी होगा, माया और लोभ दोनों ही बंधने वाली है तो जिसमें संक्रमित होता है, यानी प्रतिग्रह प्रकृति है दो बन गई, लोभ संज्वलन और माया संज्वलन। तो माया संज्वलन में कौन कौन संक्रमित होगा, तो तीन लोभ और दो माया, ये तो पहले बताया ना उन्होंने, तीन लोभ और दो माया का माया संज्वलन में संक्रमण करता है, तथा तीन प्रकार की माया और दो प्रकार के लोभ की लोभ संज्वलन में संक्रमण करता है, लोभ की का लोभ का। हाँ, उदय होने की आवश्यकता नहीं, बंद होने की आवश्यकता है, जो उदय रूप नहीं प्रकृतियां वो बंधने वाली में संक्रमित करती है, क्योंकि यहाँ प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का तो उदय होने का सवाल नहीं है, श्रेणी में अभी जी और सत्ता में पड़ी है, तो पड़ी पड़ी वो संज्वलन लोभ रूप से संज्वलन माया रूप से संक्रमित होगी। अब ये उल्टा पुल्टा कैसा भी, इसलिए लोभ भी माया में और माया भी लोभ में, दोनों बताइए, प्रोवाइडेड जिसका बंद है, अब तक लोभ और माया दो का ही बंद है, इसलिए दोनों में ही आपस में संक्रमण बताएंगे। जब मान का उदय चालू हो जाएगा, बंद भी चालू हो जाएगा उदय के साथ, तीनों का आपस में बताएंगे। ये हिंदी से फिर पढ़ती हूँ। माया वेदक के तीन प्रकार के लोभ और दो प्रकार की माया का माया संज्वलन में संक्रमण करता है, तथा तीन प्रकार की माया और दो प्रकार के लोभ का चाहिए, लोभ का लोभ संज्वलन में संक्रम करता है। ख्याल में आई बात, क्यों कॉम्बिनेशन लिया, तीन लोभ और दो माया का संज्वलन माया में,
तीन माया दो लोभ,
तीन माया दो लोभ का संज्वलन
लोभ
में। हाँ, शंका, ऐसा किस कारण से होता है, उसका समाधान, एक तो माया और लोभ संज्वलन का यहाँ पर बंध संभव है, संभव ने होता है, संभव ने यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं लेना, होता ही है, क्योंकि संभव हम मराठी में तो हम पॉसिबिलिटी के लिए लेते हैं, संभव ऐसा नहीं है, इसलिए जहाँ जहाँ अनुवाद करने में संभव शब्द है ना, तो होता है ऐसा मुझे कहना पड़ा। दूसरे, यहाँ पर अनानुपूर्वी संक्रम होने लगता है, पहले ही हुआ था परंतु अनानुपूर्वी के लोभ संज्वलन का दूसरा कोई था ही नहीं जिसमें वो संक्रमित हो जावे, बंधने वाली एक ही थी, यहाँ बंधने वाली दूसरी आ गई, इसलिए दोनों का आपस में होने लगा। इसलिए चूर्णी सूत्र में कहे अनुसार संक्रम की प्रवृत्ति निर्बाध रूप से पाई जाती है, सूत्र में जो बताया है दोनों ओर से वैसा संक्रमण पाया जाता है। अब यहीं पर स्थितिबंध के प्रमाण का निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध कहते हैं। अब माया वेदक का पहला समय है, यहाँ पर बंध किसका होगा, उतरने वाले को, मान कहाँ आया है अभी, माया वेदक का, माया और लोभ और कोई अन्य की बात नहीं, विमोहनी की करो, बाकी घाती कर्म तो बंद रहे, उनका भी स्थितिबंध कहेंगे, तो माया वेदक के पहले समय में स्थितिबंध कितना होगा उसकी बात यहाँ बताएंगे। लोभ वेदक के पहले समय में हम देख चुके हैं, अब यहाँ बात करेंगे। परम समय माया वेदगस्त दोन्नम संजलनानम दुमास ठिदिगो बंधो शेषाणम कम्मानम ठिदिबंधो संखेज वस्त सहस्राणी। प्रथम समयवर्ती माया वेदक के दो संजलनों का दो मास प्रमाण स्थितिबंध होता है, शेष कर्मों का संख्यात हजार वर्ष प्रमाण स्थितिबंध होता है। देखो, चढ़ने वाले चरम समयवर्ती, चरम यानी अंतिम समयवर्ती, चढ़ने वाले का अंतिम, उतरने वाले का पहला, दोनों एक साथ एक समान लेवल पर है ना, तो चढ़ने वाले का अंतिम समय जो था माया वेदक का, वहां पर माया और लोभ संज्वलन का अंतिम स्थितिबंध एक मास स्थिति वाला हो गया था। हमेशा देखते उतरने वाले के डबल होता है, वहां पर उसी पोजीशन पर उतरने वाले का दो मास, दो ये चढ़ने वाले का एक मास है, उसी पोजीशन पर उतरने वाले का दो मास हुआ, यानी डबल हुआ। परंतु यहाँ पर गिरे हुए परिणामों के माहात्म्यवश, यानी परिणाम संक्लिष्ट रूप हो गए। उस स्थान को प्राप्त न होने के पहले ही उसके दूना हो गया, अभी उस पोजीशन पर पहुंचा भी नहीं है, क्योंकि पहले क्योंकि काल इसका बड़ा है ना थोड़ा, इसलिए उसके पहले ये दो गुना हो गया। इसी प्रकार शेष कर्मों का भी इसी प्रतिभाग के अनुसार, प्रतिभाग ने इसी प्रपोर्शन संख्यात हजार वर्ष प्रमाण स्थितिबंध हो जाता है, यानी वहां भी संख्यात हजार वर्ष कहा था, यहाँ भी संख्यात हजार, फिर भी वो दो गुना समझना, क्योंकि संख्यात हजार 4000 को भी संख्यात हजार कहेंगे, 8000 को भी संख्यात हजार कहेंगे, 20000 को भी संख्यात हजार कहेंगे, तो उसी प्रपोर्शन में ये जहाँ संख्यात हजार होगा। इस प्रकार प्रथम समयवर्ती माया वेदक के स्थितिबंध के प्रमाण का निश्चय करके अब द्वितीय आदि स्थितिबंधों की, पहला स्थितिबंध तो अंतर्मूर्त चलेगा, दूसरा तीसरा आगे के स्थितिबंधों की यहाँ पर किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, ऐसी आशंका के होने पर आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं। ये हो गई बात, पहले समयवर्ती माया वेदक के दो संगलनों का दो मास प्रमाण स्थितिबंध होता है और शेष कर्मों का संख्यात हजार वर्ष होता है, एक बात हो गई, तो ये स्थितिबंध अंतर्मूर्त तक चलेगा। अब दूसरा स्थितिबंध कितना होगा, कितना बढ़कर होगा, द्वितीयादि स्थितिबंध, द्वितीयादि समयों का स्थितिबंध नहीं बताया, द्वितीयादि स्थितिबंध, यानी हम तो देख चुके एक कोई भी स्थितिबंध अंतर्मूर्त तक उतना उतना होता है, फिर और नए प्रमाण वाला होगा तो वो कितने होता है, कभी उतरने वाला है तो बढ़ते हुए ही होगा। तो यहाँ कहते हैं पुण्य पुण्य स्थितिबंधे मौनी वज्जानम कम्माणम संख्यज गुणों, डबल जय चाहिए, स्थितिबंधो मोहनीयस्य स्थितिबंधो विशेष आयो, पीछे देख लो संख्यज, हाँ संख्यज स्थितिबंध सहस्यु बदे, ये पहले ही लाइन में लास्ट शब्द है ना, संख्यज गुणो है, संख्यज डबल ज, संख्यज गुणो स्थितिबंधो, यानी मौन्य को छोड़कर बाकी का संख्यात गुणा हो जाता है और मौन्य का विशेष अधिक विशेष अधिक होता है, मौन्य से स्थितिबंधो विशेष आयु। अब नीचे हिंदी में उत्तरोत्तर एक एक स्थितिबंध के पूर्ण होने पर, यानी पुण्य पुण्य लिखा ना, यानी पूर्ण पूर्ण होने पर, यानी एक एक का पूर्णता होने पर मौन्य कर्म के अतिरिक्त ने उनको छोड़कर बाकी, यानी एक्सेप्ट मौनीय कर्म, शेष कर्मों का संख्यात गुणा स्थितिबंध होता है, यानी मान लेते कि कितना होता था संख्यात हजार, 4000 से 8000 हुआ, 8000 से 16000 हुआ, जो कुछ है संख्यात गुणा संख्यात गुणा, दो गुणा कहेंगे तो भी संख्यात गुणा, चार गुणा हो जाए तो भी संख्यात गुणा, तथा मौनीय कर्म का विशेष अधिक स्थितिबंध होता है, एक एक अंतर्मूर्त में इतना इतना बढ़ता चला जाता है। जिस प्रकार चढ़ने वाले जीव के इस स्थान पर ज्ञानावरणादि कर्मों के संख्यात गुणी हानि रूप से स्थितिबंध की प्रवृत्ति होती, स्थितिबंध संख्यातवा भाग रहता चला जाता है, तो उसकी हानि कितनी हुई, संख्यात गुणा हानि हुई,
संख्यात बहुत,
अब यहाँ संख्यात गुणा वृद्धि हो जाएगी उल्टे क्रम से। उसी प्रकार उतरने वाले जीव के संख्यात गुणी वृद्धि रूप से स्थितिबंध की प्रवृत्ति होती है। मयंक भाई आपको दिख रहे हैं क्या वहाँ, हाँ, तथा जिस प्रकार चढ़ने वाले जीव के मौनीय कर्म का स्थितिबंध विशेष हानि रूप से होता है, थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है, उसी प्रकार उतरने वाले जीव के विशेष अधिक वृद्धि रूप से, वृद्धि ने बढ़ना, स्थितिबंध की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि चढ़ने वाले जीव की अपेक्षा विपरीत रूप से उतरने वाले की प्ररूपणा की प्रवृत्ति देखी जाती है, यही सूत्र का तात्पर्य अर्थ है। सूत्र का अर्थ क्या,
कि चढ़ने वाले से उतरने वाले की जो कुछ प्ररूपणा है, सभी प्रवृत्ति होती है, वो सब उल्टे क्रम से होती है। वहाँ स्थितिबंध विशेषहीन होता है, यहाँ विशेष अधिक होता है। जहाँ संख्यात गुणाहीन होता था, यहाँ संख्यात गुणा होता है। इस प्रकार इस विधि से, यानी हर समय जो नया नया स्थितिबंध है, अन्य कर्मों में संख्यात गुणा मोहनी में विशेष विशेष अधिक, इस विधि से यानी इसी पद्धति से हजारों स्थितिबंध करने वाले के क्रम से माया वेदक काल समाप्त होता है। लोभ वेदक काल में भी हजारों स्थितिबंध हुए, वो एक काल अंतर्मूर्त का, पूरा अनिवृत्तिकरण काल ही अंतर्मूर्त का, उसमें ये छोटे अंतर्मूर्त, उसमें वो हजारों हर एक में। और एक एक, अभी तो यहाँ अनुभव की बात नहीं है, वहाँ तो एक स्थिति बंद काल में तो हजार, वो तो कांडघात की बात है, यहाँ तो अभी वो शुरू नहीं हुए। तो इस विधि से हजारों स्थितिबंध करने वाले के क्रम से माया वेदक काल समाप्त होता है। इस बात का कथन करने के लिए आगे के सूत्र का निर्देश करते एदेन कमेण संख्यज्येषु स्थितिबंध सहस्येषु गदेषु चरिम समय माया वेदगो जादो जादो नहीं होता है। इस क्रम में कमेण एदेन कमेण इस क्रम में क्या इस क्रम से इस क्रम से चाहिए ना इस विधि से इस क्रम से इस क्रम से संख्यात हजार स्थितिबंधों के गत होने पर यानी बीत जाने पर अंतिम समयवर्ती माया वेदक हो जाता है। यह सूत्र सुगम है, यानी इसके बाद क्या होगा, मान वेदक शुरू हो जाएगा। अब इस संधि विशेष में, संधि यानी अभी जॉइंट है ना, जिसको माया वेदक संपूर्ण पूरा हो जाएगा, मिट जाएगा और नेक्स्ट समय में मान वेदक चालू हो जाएगा, इसको संधि कहेंगे। इस संधि विशेष में विद्यमान जीव के स्थितिबंध के प्रमाण का निश्चय करने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं, यानी अभी माया वेदक का अंतिम समय का स्थितिबंध कहेंगे। नेक्स्ट समय में नया स्थितिबंध होगा क्योंकि माया वेदक भी समाप्त होगा, यहाँ का स्थितिबंध का अंतर्मुहूर्त भी समाप्त होगा, आगे दोनों नए प्रमाण से शुरू हो जाएगा। साधे यानी वहाँ पर यानी अंतिम समय माया वेदक का दोन्नम संजलनानम स्थितिबंधो चत्तारी मासा अंतो मुहूर्त तूणा ने अंतर्मुहूर्त से कम चार मास, तो मान में वो चार मास कहेंगे। शेषाणम कम्माणम स्थितिबंधो संख्यज्जानी वत्स सहस्रानी तब दोनों संजलनों का स्थितिबंध अंतर्मुहूर्त कम चार मास होता है, यानी चार मास माइनस अंतर्मुहूर्त। यहाँ कम शब्द पहले डालने की पद्धति है, अंतर्मुहूर्त से हीन हो गया, चार मास, चार महीने में एक अंतर्मुहूर्त कम। हम मराठी हिंदी में कैसे पहले जिसमें से घटाना है उसको नाम का पहले चार में से एक अंतर्मुहूर्त कम ऐसा कहते हैं, यहाँ अंतर्मुहूर्त कम चार मास ऐसे कहेंगे। पर तो कौन कह रहा था ये कम वाली बात हमको अभी अभी समझ में आने लगी, चारों से कुछ कोई बता रहे हैं। तथा शेष कर्मों का स्थितिबंध संख्यात हजार वर्ष प्रमाण होता है, वो विशिष्ट संख्यात गुणा हो गया पहले, क्योंकि चढ़ने वाले माया वेदक जीव के स्थितिबंध से चढ़ने वाला माया वेदक का पहला समय, यहाँ दुगुणे स्थितिबंध की सिद्धि बिना बाधा के उपलब्ध होती है। इस प्रकार माया वेदक के काल को समाप्त करके तदनंतर समय में मान वेदक भाव से परिणत हुए जीव की प्ररूपणा में जो भेद होता है उसका कथन करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। जैसे हमने लोभ में से माया में आया, वहाँ जो गुण श्रेणी बनी, जो कुछ कार्य हुआ, जो नया बंध होगा, वो सब अभी यहाँ बताएंगे। तदो से काले तिविहम मानम ओक्कड्डियूण उसका उपकर्षण होकर मान संजलनस्य उदयादि गुण सेढ़ीम करेदी
दुविहस्त मानस आवलिय बाहिरे गुणसेडिम करेदी नवविहस्त विकसायस गुणसेडी निक्षेवो जातस्य पडिवद मानगस्य मानवेगदद्धा तत्त्व विशेषायो निक्षेवो। अभी मानवेदक के थोड़ा सा अधिक निक्षेप हो गया उसका, नीचे नीचे वो बढ़ता चला जाएगा। मोहनीय वज्जानम कम्माणम जो परम समय सुहम सांप्रायेण निक्षेवो निक्षिप्तो तस्य निक्षेवस्य शेषे शेषे निक्षेवति। अन्य कर्मों में उसकी बात चल रही है, हिंदी में पढ़ेंगे आपको ख्याल आएगा। पश्चात अनंतर समय में, माया वेदक काल के अनंतर समय में यानी मान वेदक का पहला समय होगा। मान का तीन प्रकार के मान का अपकर्षण करके, अप्रत्याकरण प्रत्याकरण और संज्वलन मान का अपकर्षण किया गया। अभी तक क्यों नहीं किया बोलो तो? अब जो माया का चल रहा था तो क्यों नहीं किया? वह बहुत अच्छा, वह उपशमित था, उसका उपशम नहीं छूटा था। एक एक को लॉकअप में डाला था, बाद में एक उल्टे क्रम से उसको छूटा है। तो तीन प्रकार के मान का अपकर्षण करके मान संज्वलन की उदयादि गुण श्रेणी करता है। ये बात है ना, अपने माया के बारे में भी पूछा था ना। तो जो संज्वलन को ही उदय के समय से लेकर उदयादि गुण श्रेणी होगी, बाकी के उदयादि के ऊपर होगी। तथा अन्य दो प्रकार के मान की उदयावली बाह्य गुण श्रेणी करता है। नौ प्रकार के कषाय का भी गुण श्रेणी निक्षेप होता है, जो गिरने उसका मान वेदक काल है उससे विशेष अधिक निक्षेप होता है। अभी नौ प्रकार के कौन रहे नितिन भाई? नौ प्रकार के कषाय कौन से लिए मंजू, आप बताएंगे? तीन लोग, तीन माया और तीन मान, ये नौ हो गए ना। उन सब का गुण श्रेणी निक्षेप समान है। तो सबका गुण श्रेणी निक्षेप समान, केवल संज्वलन मान का भी उदय चलेगा तो उसका उदय के समय से लेकर गुण श्रेणी निक्षेप होगा, बाकी सबकी जो लेवल है वो एक समान। वो कितनी है? अब मान वेदक से एक अवधि ज्यादा। विशेष अधिक निक्षेप होता है ना, निक्षेप का अर्थ कितने निषेक में डाला जाएगा गुण श्रेणी रूप से, निक्षेप करना नहीं डालना। तथा मोह कर्म को छोड़कर प्रथम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक के द्वारा शेष कर्मों का जो निक्षेप निक्षिप्त किया गया है उस निक्षेप के शेष शेष में निक्षिप्त करता है। पहले समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक ने जो गुण श्रेणी बनाई थी उसका आयाम कितना था? तो अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण से थोड़ा ज्यादा था, तो उसी में वो गुण श्रेणी रूप से उसमें निक्षेप करता है।
गलित अवशेष
जितना बाकी है उसमें चलेगा। ख्याल में आई ये बात आपको? नहीं आई? देखो ये मोहनी को छोड़कर अन्य की बात चल, शेष कर्मों की बात है ना। जब उतरने वाले ने, हमने देखा था ग्यारहवें गुणस्थान में था तो ज्ञानावरणादि कर्मों की गुण श्रेणी कितनी थी? तो ग्यारहवें की संख्या से विभाग प्रमाण। जब ग्यारहवें से निकलकर दसवें में आया तो ज्ञानावरणादि में कितनी बनी? तो अनिवृत्ति अपूर्व प्लस थोड़ी, इतनी उसने गुण श्रेणी ज्ञानावरणादि की बनाई। अब वो गुण श्रेणी क्रम से एक एक समय घटते हुए वो कम होती चली जाएगी। तो जितनी अभी शेष बची है उसमें ये गुण श्रेणी रूप से निक्षेप चलेगा। पहले समय में बनाएंगे, जरूरी नहीं ऊपर उसने गुण श्रेणी रूप से तो उतनी बनाई। उसमें सांप्राय का जैसे ग्यारहवें में तो ग्यारहवें की संख्या पे भाग बनाए थे, वैसे सूक्ष्म सांप्राय का काल वैसे भी छोटा है परंतु अपूर्व और अनिवृत्तिकरण का काल मिलकर थोड़ा अधिक ले लिया उसने। हाँ, नीचे से दूसरी लाइन में द्वारा
सांप्रायिक यानी जीव, उतरने वाला दसवें गुणस्थान का पहला समय वाला जो जीव है, उसने शेष कर्मों का जो निक्षेप निक्षिप्त किया था, यानी उसने जो गुणश्रेणी का आयाम बनाया था, उसका जो बाकी बचा है उसकी बात है। पेज 50 निकालना। देखो सूत्र, आयु कर्मों को छोड़कर शेष कर्मों का गुणश्रेणी निक्षेप यानी गुणश्रेणी का आयाम कितना है? अनिवृत्तिकरण के काल से और अपूर्वकरण के काल से विशेष अधिक होता है। उसका जो अंतर्मूर्त, उसका अंतर्मूर्त दोनों मिलकर जो है उससे थोड़ा ज्यादा इतना गुणश्रेणी निक्षेप यहाँ पर बनाया। इसमें कोई अंतर विंतर की तो कोई बात थी ही नहीं, वो तो कंटिन्यूस वहाँ निषेक पड़े थे। गुणश्रेणी रूप से कितने में दिया उसकी बात है। अब उसमें से हर समय एक एक निषेक गल जाएगा, परंतु ऊपर का निषेक गुणश्रेणी रूप से नहीं आएगा उसमें, वहाँ वो निषेक आएंगे क्रम से, परंतु गुणश्रेणी उतने में ही दिए जाएगी जितने शेष बची हुई निषेक है उसमें। यही बात हमने मान वेदक में भी देखा था। देखो पृष्ठ 62 पर माया वेदक में भी देखा था नीचे का सूत्र। परंतु शेष कर्मों का जो पूर्व का निक्षेप है, पूर्व का यानी जो अभी हमने देखा था, जो सूक्ष्म सांप्राय में बनाया था और अभी बनकर जो अभी शेष बचा था, उसके शेष शेष में ही गुणश्रेणी को निक्षिप्त करता है शेष कर्मों को। उसके शेष में, उस निक्षेप के शेष में, उस आयाम के शेष में, जो निक्षेप कहो या गुणश्रेणी आयाम कहो, उस गुणश्रेणी का जितना शेष आयाम बाकी बचा है
उसमें,
उसी में गुणश्रेणी रूप से रचना हो। इसमें भी ऐसे ले लो,
या फिर चढ़ते समय जो परिणामों की मंदता होती जाती है उसकी वहाँ पे असंख्या गुणा समय प्रपत्र होता था। अभी यहाँ पे जो गुणश्रेणी रचना होगी वो भी,
यहाँ भी असंख्या समय प्रपत्र चल रही है अभी।
हाँ, पर वो यहाँ पे संकलेश की वृद्धि हो रही है।
होने दो, फिर भी
तो भी गुणश्रेणी
परिणाम कैसे अनिवृत्तिकरण के चल रहे कि नहीं? नीचे के गुणस्थानों की अपेक्षा बात करो, चढ़ने में जितना उसने माल छुपाया है, उतरने में भले वो कम करेगा, फिर नहीं, नहीं फिर भी असंख्यात गुणा तो थी ही।
नहीं,
समय एक समय प्रबद्ध से असंख्यात गुणा द्रव्य निर्जरित हो रहा है यहाँ पर भी।
नहीं, मैंने क्या पूछा, गुणश्रेणी की रचना ऐसे होती है, उदय के समय से दूसरे समय में द्रव्य ज्यादा होता है, असंख्यात गुणा होता है, तो यहाँ पे जो उत्तर के समय संकलेश की ओर बढ़ रहा है,
फिर भी
तो
गुणश्रेणी है, गुणश्रेणी कंटिन्यूस है।
हाँ, वो भी असंख्यात गुणा प्रति समय
बिल्कुल है, इसी को तो गुणश्रेणी कहते हैं। अभी रेगुलर छठे सातवें गुणस्थान में
गुणश्रेणी की रचना। अच्छा, छठे
तो सातवें में से छठे में आने वाला गुणश्रेणी उसकी भी
गुणश्रेणी,
जो कुछ अभी उसका गुणा का प्रमाण कम होगा,
कम होगा,
फिर भी वहाँ पर भी एक समय प्रबद्ध से बहुत ज्यादा माल खिल रहा है, ऐसी गुणश्रेणी तो पांचवें गुणस्थान से होती
है, कंटिन्यूस।
परंतु यहाँ की गुणश्रेणी का जो आयाम है वो छोटा
कम होता जाता है
और उसमें द्रव्य आने वाला बहुत ज्यादा है।
नहीं, यहाँ पे हमने जो देखा था, पहले मैंने पूछा था कि आयाम समय समान, तो आपने बताया थी कि नहीं उसके बारे में कुछ कहा नहीं है, हम लोग कुछ
नीचे नीचे
आयाम बढ़ता जाता है तो द्रव्य कम होता जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना?
आयाम जो ऑलरेडी वहाँ जो दिए है नीचे वो तो वहाँ पड़े ही है।
नहीं, आयाम बढ़ता गया है तो लोभ के लोभ में
तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पर निषेक कम आएगा,
कम आएगा तो
फिर भी ऑलरेडी वहाँ इतने बड़े निषेक बन चुके हैं, उसकी फिरना तो होगा ही होगा। चढ़ते समय भी और उतरते समय भी असंख्यात गुना निर्जरा होती, इतना ले ले, उतरने में भी चल रहा है, मिट नहीं गया उसका। देखो अभी आगे बढ़ेंगे, ये शेष शेष में निक्षेप होता है, ये समझ में आई ना बात? कहाँ के लिखा भी, उस निक्षेप के यानी उस गुणश्रेणी आयाम के शेष शेष में जो बाकी रहा है निषेक उसमें निक्षिप्त करता है, उसमें गुणश्रेणी रूप से द्रव्य दिया जाता है। हर समय अपकर्षण का कार्य चलता है, कहीं पर भी जो ये सारे निषेक पड़े हैं जो अंतर्मूल अंतर कोड़ा कोड़ी प्रमाण सब में से थोड़े थोड़ा द्रव्य नीचे आ जाता है, जिसको कहेंगे अपकर्षण हुआ, और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या होता है, तो नीचे तो गुणश्रेणी रूप से दिया जाएगा और ऊपर ये थे तो उसमें क्या होगा, उसमें भी घटते क्रम से दिया जाएगा। इसी का माल इसी में देना है और कहीं से बाहर से तो आना नहीं है। सत्ता में जो पड़ा है उसका आकर्षण चलता रहता है, तभी तो ये तो फिर जाएंगे ना कर्म। एक बार उच्चम श्रेणी चढ़ के उतरा है तो इतना तो द्रव्य उसने छिपाया है, ये बात आएगी। उस निक्षेप के शेष शेष में निक्षेप करता है, निक्षेप का शेष का अर्थ होता है जो गुणश्रेणी आयाम अभी उसका बाकी है, गलित रहकर गलित अवशेष बाकी है, उसमें अपकर्षित द्रव्य गुणित प्रमाण में दिया जाएगा। यहाँ मान संज्वलन की, मान का उदय शुरू है ना, अभी उदयादि गुणश्रेणी प्ररूपणा यानी उसका कथन माया संज्वलन के समान है, इतनी विशेषता है। ऊपर आवली मात्र विशेष अधिक यह गुणश्रेणी निक्षेप करता है ऐसा यहाँ कहना चाहिए, शेष कथन सुगम है। नीचे वो बढ़ता हुआ गुणश्रेणी का निक्षेप होगा जो यहाँ पर कषाय उनकी बात है। पहले गलितावशेष देखा वो किस में था,
बाकी के खाते पर,
बाकी छह में देख, आयु में तो होता नहीं है, मोहिनी की बात तो स्वयं बता रहे हैं। बाकी ज्ञानावरण आदि जो छह है, ज्ञानावरण है, रचनावरण है, अंतरा है, वेदनी है, नाम है, गोत्र है, उसमें गलितावशेष गुणश्रेणी में वो निक्षिप्त होगा उसका विशेषार्थ। यहाँ नौ प्रकार के कषाय से तीन मान तीन माया तीन लोग लेने चाहिए, लेने चाहिए ने समझने चाहिए। हमने पूछा था ना वह ऊपर नौ प्रकार के कषाय का भी गुणश्रेणी निक्षेप होता है, तो नौ कौन से, तो तीन लोग तीन माया तीन मान, या संज्वलन मान का उदय है उसकी गुणश्रेणी उदय के समय से, और बाकी उदयावली के ऊपर गुणश्रेणी, परंतु सबका आयाम जो है अंतिम जो लास्ट लिमिट है वो सबकी सेम है। अब परम समय मान वेदगस्त नव विहोगी कषायो संकमदि, प्रथम समयवर्ती मान वेदक के नौ प्रकार की ही कषायें संक्रमित होती हैं, सबका एक में एक में संक्रमण चलेगा, क्योंकि तीनों संज्वलनों का बंद होते समय, अभी मान वेदक शुरू हुआ तो मान का माया का और लोभ संज्वलन का तीनों का ही बंद है, तो एक एक में बाकी सभी सभी संक्रमित हो, यानी नौ कषाय है ना यहाँ पर, तो हर एक में मान में अन्य आठ लेना, माया में अन्य आठ लेना, लोभ में अन्य आठ लेना, वो संक्रमित हो गए, क्योंकि तीनों संज्वलनों का बंद होते समय नौ प्रकार की ही कषायों के अनानुपूर्वी से संक्रम होने के प्रति निषेध नहीं है। हाँ, निषेध नहीं है, अनानुपूर्वी का निषेध नहीं है। साधे तिन्नम संज्वलनानम किजिबंधो सत्तारी मासा परिवुन्ना शेषाणम कम्मानम किजिबंधो संखेत जाने वस्त सहस्तानी, उस समय तीनों संज्वलनों का स्थितिबंध, अब ये पहला समय है ना, ऊपर तो अंतर्मूल कम बताया था, तो यहाँ पूर्ण परिपूर्ण चार मास होता है। मान वेदक शुरू हुआ है यहाँ पर और तीन संज्वलनों का स्थितिबंध हो रहा है तो चार मास होता है। शेष कर्मों का स्थितिबंध संख्यात हजार वर्ष प्रमाण होता है, क्योंकि चढ़ने वाले जीव के विपर्यास से या उससे दुगुने स्थितिबंध की सिद्धि निर्बाध रूप से होती है। हमने देखा था ना चढ़ने वाले का मान का अंतिम स्थितिबंध कितना है, तो यहाँ उपसंश्रेणी में दो मास है। एवं ठिजिबंद सहस्राणि बहूणि गंतुण मानस चरिम समय वेदगस्त तिन्नम संजलनानम ठिजिबंदो अठ मासा अंतो मुहूर्तूणा शेषाणम कम्माणम ठिजिबंदो संख्यज्जानि वस्त्र सहस्राणि। अभी भी उसको संख्या तो ऐसे ही कह रहे हैं, संख्या हजार, अभी कितना करोड़ों अब्जों में पहुंचा गया होगा ना, फिर भी क्या कहेंगे संख्या हजार। इस प्रकार बहुत हजारों स्थितिबंध के गत होने पर, हजार दो हजार नहीं, बहुत हजारों स्थितिबंध के गत होने पर मान संगलन के अंतिम समयवर्ती वेदक के, वहाँ चार मास जो हमने देखा था वो प्रथम समय वेदक था, अब ये अंतिम समय में आ गया। तीन संगलनों का स्थितिबंध अंतर्मुहूर्त कम आठ मास होता है, शेष कर्मों का स्थितिबंध संख्यात हजार वर्ष प्रमाण होता है। अब इससे हम डिराइव कर सकते हैं जब क्रोध वेदक शुरू होगा तो स्थितिबंध कितना होगा, कंप्लीट आठ मास, यहाँ अंतर्मुहूर्त कम है ना, नहीं समझे। अभी मान वेदक का अंतिम समय है, अभी नेक्स्ट समय में क्रोध वेदक का पहला समय होगा तो नया बंद होगा, तो ये अंतर्मुहूर्त कम था वो अंतर्मुहूर्त से बढ़कर पूरा आठ मास हो जाएगा। यदि हम चढ़ने वाले से कंपेयर करते तो उसको आधा कहते हैं। क्रोध वेदक के अंतिम समय में कितना हुआ था, तो चार मास हुआ था, उससे ये आठ मास डबल हो जाएगा। परंतु यहाँ किससे कंपेयर करें, मान वेदक के अंतिम समय में अंतर्मुहूर्त कम चार मास था, सॉरी आठ मास था, और अभी पढ़ा नहीं हमने, ये हम स्वयं सोच सकते हैं। तो यहाँ हाँ यहाँ तीन संवेलनों की बात, हाँ ज्ञानावरणादि अन्न उसी की तो बात है, तीन संज्वलन में उसी की तो बात है, लोभ संज्वलन माया संज्वलन
मान।
नहीं, तीन लोभ का बंध कहाँ है, वो प्रत्यक्षण प्रत्यक्षण का यहाँ बंध कहाँ है, मोहनी का डबल तो चढ़ने वालों से डबल है, संख्यात गुणा
है, हानि भी संख्यात गुणी हानि होती थी ना,
संख्यात गुणी हानि, वो अपनी अपनी संख्यात गुणी हानि होती थी। समझ में आई बात, तीन संज्वलन है, संज्वलन लोभ संज्वलन माया संज्वलन मान, और शेष कर्मों का यानी ज्ञानावरणादि शेष कर्मों का स्थितिबंध संख्यात हजार वर्ष प्रमाण होता है। हाँ अभी चारों का बंद होगा, जब क्रोध वेदक काल आएगा, क्रोध मान माया लोभ चारों का बंद होने तो संक्रमण और ज्यादा उलट पुलट हो जाएगा। यह सूत्र गतार्थ है, इस प्रकार
क्रोध दो,
अभी क्रोध का नहीं शुरू है ना, अभी हम मान में ही, अभी इस प्रकार मान वेदक काल को उल्लंघन करके तदनंतर समय में क्रोध वेदक काल के प्रथम समय में विद्यमान जीव की प्ररूपणा में जो विशेषता होती है उसका प्रतिपादन करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। से काले तिविहम कोहम ओकड्डीयुण कोह संजलनस्य उदयादि गुण सेढ़ीम करेदि दुविहस्य कोहस्य आवलीय बाहिरे करेगी, आवली बाहर नहीं उदयावली बाहर। तदनंतर समय में तीन प्रकार के क्रोध का आकर्षण करके क्रोध संज्वलन की उदयादि यानी उदय के समय से लेकर गुणश्रेणी करता है तथा दो प्रकार के क्रोध की उदयावली के बाहर गुणश्रेणी निक्षेप करता है, गुणश्रेणी करता है कहो, उतना निक्षेप करता है कहो, इतना आयाम वाली गुणश्रेणी बनाता है कोई की बात है। इस रूप में गुण श्रेणी निक्षेप करता है, यह इस सूत्र का अर्थ है। एन्यम गुण श्रेणी निक्षेपो केत्यो कायवो, इस समय गुण श्रेणी निक्षेप कितना किया जाता है, यहाँ प्रश्न चाहिए, प्रश्न चिन्ह।
चढ़ने वाले कोई भी एक उदय से चढ़ सकता है, उतरने वाले का चारों पांव उदय होगा ही?
नहीं, जरूरी नहीं।
नहीं क्रोध
अभी
लोक, नहीं नहीं नहीं, लोक का उदय मिट गया, लोक का उदय हो गया, पीछे मान माया का होगा, पीछे मान का होगा, ऐसे होगा ही,
लोक से ही उतरेगा।
नहीं, चढ़ते समय नहीं, मैं उतरते समय की बात कर रहा हूँ।
अभी उसकी तो बात इनके मगज में मत डालो, अभी अभी क्रम से चढ़ा है एक एक क्रोध का उदय।
नहीं नहीं, क्रोध से चढ़ा है, पर उतरते समय उसका,
उतरते समय जब हम अन्य अन्य की बात करेंगे ना, ये होने के बाद, आप बहुत जंप मत करना, इन लोगों को यही समझने में बहुत कठिनाई आ रही है। पुरुष वेद और क्रोध की बात करेंगे, ये क्रम से एक एक कषाय का उदय हो रहा है, यहाँ अन्य जो कोई हो सकती है पॉसिबिलिटी, उसकी चर्चा वो स्वयं करेंगे। क्योंकि ये बहुत कठिन विषय है, और वो भी यहाँ तो डायरेक्ट ही समझाए, सही भी नहीं है कि जैसे सम्यक ज्ञान चंद्रिका में कंटिन्यूअस में समझा रहे हैं, ख्याल में आती बात, वो भी समझने में बहुत मुश्किल हो जाती है। हमें पता है ना, जब हमने पहली बार पढ़ा था दोनों ने मिलकर, इतना हमारा बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना, कुछ समझ में नहीं आ गया ऐसा चल रहा था, जैसे तामिली सुनकर आपको क्या लगेगा, कुछ नहीं समझते, वैसे हमारा हुआ था। इसलिए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते, कुछ बिना समझे पूरा ही हमने लब्धि सर चपड़ा सर, पहले दो तो थोड़े थोड़े तो समझ में आते थे क्या पढ़ रहे। हाँ, जीव कांड वैसे भी हाँ, परंतु इतना ही था कि नहीं, हमको पढ़ना ही है, इस रीति से हमने पढ़ा। इसलिए ये निक्षेप क्या होते हैं, गुणश्रेणी क्या होते हैं, ये मान वेदक ये कुछ नहीं समझता था। अभी तो थोड़ा हमें जितना समझ आए उसमें से थोड़ा थोड़ा आपको बता सकते हैं, फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ तो क्या चल रहा है पता नहीं चलता। इसलिए रेगुलर रूटीन में जाने दो, अन्य जो पॉसिबिलिटी है हम पढ़ेंगे, उसकी चर्चा आएगी ना आगे, स्वयं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम खुद करेंगे या फिर लब्धिसार के आधार से करेंगे। अभी यहाँ उसकी चर्चा करेंगे तो उस समय क्या करेंगे, फिर वो चपना की करेंगे। तो इस समय गुण श्रेणी निक्षेप कितना किया जाता है, जैसे अभी तक हमने क्या देखा, जब लोग से माया में आए तो माया वेदक से एक अवली ज्यादा, माया से मान में आए उससे एक अवली ज्यादा, अब यहाँ कितना होता है प्रश्न पूछा हूँ। जिस प्रकार लोभादि प्रकृतियों का आकर्षण करने वाला अपने वेदक काल से, अपना वेदक काल बताए ना, एक आवली अधिक गुण श्रेणी निक्षेप करता है, क्या इसी प्रकार क्रोध वेदक जीव भी गुण श्रेणी निक्षेप करता है या अन्य प्रकार से करता है, यह इस सूत्र द्वारा पूछा की गई। अभी तो केवल प्रश्न पूछा है, उसका जवाब स्वयं देंगे सूत्र में। परम समय क्रोध वेदगस्य बारसन्नमति कषायानम जो गुणश्रेणी निक्षेवो सो शेषाणम कम्माणम गुणश्रेणी निक्षेवेन सरिसो होंदी। प्रथम समयवर्ती क्रोध वेदक के बारह कषायों का जो गुणश्रेणी निक्षेप होता है, वह शेष कर्मों के गुणश्रेणी निक्षेप के समान ही होता है। अब सबका समान होगा,
अनिवृत्ति करण,
अभी
ज्ञान,
अभी उसका भी शेष बचा हुआ, उसका हाँ, उसका जितना शेष हाँ, है उतना ही इसका भी बनेगा। इस प्रथम समयवर्ती क्रोध वेदक के बारह कषायों का जो गुणश्रेणी विन्यास होता है, विन्यास है नहीं, गुणश्रेणी रूप से जो निक्षेप होता है, डाला जाता है, रचना होती है, वह शेष ज्ञानावरणादि कर्मों के गुणश्रेणी निक्षेप के पहले निश्चित कराए गए प्रमाण के सदृश होता है। पहले निश्चित किए ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इससे आगे के सभी अपकर्षित होने वाले कर्मों का गुणश्रेणी निक्षेप अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के काल से विशेष अधिक होता है, क्योंकि पूर्व में प्रवृत्त हुए गुणश्रेणी निक्षेप को छोड़कर यहाँ दूसरा प्रकार संभव नहीं है। यानी यहाँ वो अपूर्वकरण अनिवृत्ति से ज्यादा होता है। परंतु उन दोनों का तो गलित शेष रहा था और इनका अभी यह अनिवृत्ति अपूर्व से ज्यादा है, कैसे
ये गलित अवशेष हो जाएगा ना अभी इनका भी। हाँ, इनका भी अनिवृत्तिकरण का जो क्रोध का वैधत काल है उतना प्लस अपूर्वकरण प्लस शादिक कितना हो जाएगा, इसे ही बताया ना।
हाँ, नहीं नहीं, अभी जितना शेष बाकी है अनिवृत्तिकरण का और अपूर्वकरण का उससे थोड़ा ज्यादा। ज्ञानावरणादि का जो मान लेते हैं ना, इतना किया था 5 इंच उसने, वो कब किया था? सूक्ष्म सांप्रदायिक।
तो अभी उसका जितना गलित हो गया,
जितना गलित हो गया,
हाँ, उतना बाकी का रहा उतना प्रमाण में
उसका इतना होगा। परंतु वो अपूर्व करण और निवृत्तिकरण के समान नहीं, क्योंकि अभी सूक्ष्म सांप्रदाय का इतना चला गया उसमें से।
और अभी यहाँ पे क्या बताएंगे, अभी अनिवृत्तिकरण का जितना काल बाकी है प्लस अपूर्वकरण और विशेष अधिक।
इससे आगे के सभी अपकर्षित होने वाले कर्मों का गुणश्रेणी निक्षेप अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के काल से विशेष अधिक होता है।
तो बाकी हुआ, बाकी रहा हुआ अनिवृत्तिकरण प्लस अपूर्वकरण प्लस विशेष अधिक।
आगे पढ़ेंगे इसको, क्या बताते हैं ऊपर पढ़ा था नहीं, डायरेक्ट पढ़ा था क्या? अच्छा अच्छा, इसको पढ़ रहे हैं अभी पढ़ेंगे। जहाँ मोहनीय वज्जाणम कम्माणम शेषे शेषे गुणश्रेणी निक्षिवधि तहाँ एत्तो पाए बारसन्नम कसायाणम शेषे शेषे गुणश्रेणी निक्षिविदौवा। यानी अब तक क्या अवशेष गुणश्रेणी में निक्षेप करता था, यहाँ से आगे मोहनीय में भी ऐसे होगा। अब तक मोहनी क्या अवस्थित था, जिस प्रकार मोहनीय कर्मों को छोड़कर शेष कर्मों के गुणश्रेणी को शेष शेष में निक्षिप्त करता है, उसी प्रकार यहाँ से लेकर 12 कषायों की गुणश्रेणी को शेष शेष में निक्षिप्त करना चाहिए। यहाँ से लेकर अभी गलितावशेष बन जाएगी, अब तक तो अवस्थित थी। ज्ञानावरणादि कर्मों के समान यहाँ से लेकर 12 कषायों का भी दूसरे प्रकार का परिहार कर गलित शेष में गुणश्रेणी निक्षेप होता है। इस बात का इस सूत्र द्वारा ज्ञान कराया गया है। अब जिस समय इस प्रकार का गुणश्रेणी निक्षेप हो गया है, उसी समय इन 12 कषायों के अंतर को पूरता है। ओ अभी तक अंतर चल रहा है, पहले भी आया था अंतर को पूरता है। जब तक अंतर को पूरता है तब तक ऐसा कुछ चल रहा है, पहले शब्द आया था ना, जब तक अंतर को पूरता है उतना उतना रहता है और फिर ऐसा कुछ। ओ हाँ, ये बात आएगी कुछ। जिस कषाय के उदय से श्रेणी पर चढ़ा था, यानी अभी हम क्रोध के उदय से चढ़ा था ऐसा लिया, मान लेते हैं हमने ऐसा समझा ना, पुरुष वेद क्रोध से चढ़ा था, तो क्रोध के उदय से चढ़ा था, उसी कषाय का अपकर्षण होने पर इस प्रकार का गुणश्रेणी निक्षेप और अंतर का भरना होता है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर किंचित अंतर के भरने की विधि को बतला रहे हैं। किंचित यानी थोड़ा, शॉर्ट में, वह जैसे 12 प्रकार के कषायों का अपकर्षण करके उसी समय गुणश्रेणी निक्षेप करता हुआ उस समय क्रोध संयुलन के थोड़े प्रदेश पुंज को उदय में देता है, उसके बाद ज्ञानावरणादि कर्मों के पहले निक्षिप्त हुए गुणश्रेणी शीर्ष के प्राप्त होने तक असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज को देता है, पुनः तदनंतर उपरिम अनंत अंतर समय में, उपरिम अंतर समय में क्या, अनंतर समय में,
अनंतर के लिए
एक बार असंख्यात गुणे हीन प्रदेश पुंज को निक्षिप्त करता है, उसके बाद अंतर संबंधी अंतिम स्थिति के प्राप्त होने तक, यहाँ वो अंतर भर रहा है, उत्तरोत्तर विशेष हीन प्रदेश पुंज को निक्षिप्त
अंतर पर
उससे आगे अपने अपने अपकर्षित प्रदेश को अति स्थापनावली नहीं प्राप्त होती, वहां तक सर्वत्र विशेष हीन प्रदेश पुंज को ही निक्षिप्त करता है। इसी प्रकार यहाँ पर शेष कषायों के अंतर पूरण की विधि जाननी चाहिए, क्योंकि उनके कथन में कोई भेद नहीं है। इतनी विशेषता है कि उनके प्रदेश पुंज का उदयावली के बाहर ही गुणश्रेणी निक्षेप होता है, ऐसा यहाँ कहना चाहिए। 7 नौकषाय और स्त्रीवेद और नपुसक वेद में से भी यथावसर अपने अपने अंतर को पूर्ते समय इसी प्रकार निषेक प्ररूपणा करनी चाहिए। अच्छा, इसका ये बात सिद्ध होती है कि जिस कषाय से चढ़ा है उस कषाय का जब उदय शुरू होता है तब अंतर को पूरता है, सभी का। अब तक हम कहते थे कि अंतर, बीच में अंतर है ही नहीं, अंतर नष्ट हुआ, ऐसे ही समझते थे ना, गड़बड़ घोटाल हो गया सब अभी।
आगे आया तो सही, एक बार
अंतर पूर्ते ऐसा लिया था उन्होंने, अंतर समाप्त होने तक ऐसा,
लोभ का जब भी हुआ ना तब
लोभ नीचे आता है तभी अंतर की बात आई थी। एक मिनट वो निकालेंगे हम। कहाँ पर आया? वो 49 के उसी समय प्रथम समय के संप्राय परिणाम में विद्यमान होकर द्वितीय स्थिति में से 3 प्रकार के लोभ को आकर्षित करता है, क्योंकि उसी समय 3 लोगों की उपकामना का क्षय देखता है। उसी समय गुणश उदयादि गुणश्रेणी किया जाता है। कल इसको ले लेंगे, उतरने वाले हम लब्बी सार में से मट्टी करेंगे। बराबर याद दिलाना मुझे। हाँ अश्विन भाई को बोला पढ़ के आना आप भी लब्बी सार। जावानी के ज्ञान से तुझे लो पालो सोवानी मस्तक नो
नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोहे तब्बतावणम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोहे तब्बतावणम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोहे तब्बतावणम।